تو کوئی دھن نہیں ہے گوانا
आज की क्लास का विषय है संकल्पों का खजाना। पिछली मुरली में बाबा ने पहली सीजन की पहली मुरली बाबा ने कहा कि अब सेवा का रूप चेंज करना है, समय अनुसार अपने चाल चलन और चेहरे के द्वारा सेवा, और इसके लिए बाबा ने विशेष दो खजाने बताए थे। वैसे तो और भी कई खजाने हैं, लेकिन एक तो बाबा ने कहा कि समय का खजाना बड़ा महत्व का है, और उसके साथ साथ दूसरा संकल्पों का खजाना। जिसके पास ये संकल्पों का खजाना होगा वही ये सेवा कर सकता है। तो आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे कि संकल्पों का खजाना ये वेस्ट क्यों जाता है। तो संकल्प को के खजानों को हम कैसे बचाएं, क्योंकि जब संकल्पों का खजाना चला गया तो समय का खजाना भी गया, शक्तियों का खजाना भी गया, बाकी सभी खजाने चले जाएंगे। इसलिए संकल्पों का खजाना, तो जितना हमारे संकल्प पॉजिटिव सकारात्मक सोमान युक्त और कम चलते हैं उतनी हमारी अवस्था अच्छी रहती है, और जिसे हम सेवा कर सकते हैं। और वास्तव में हमारी जो निराकारी स्थिति है या आत्माभिमानी स्थिति है वो क्या चीज है? आत्माभिमानी स्थिति, जितने हमारे संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, सकारात्मक चलते हैं, उतना हम आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव, अशरीरी स्थिति का अनुभव, निराकारी स्थिति का अनुभव सहज ही कर पाएंगे। वास्तव में संकल्प की बचत का नाम आत्मा है। आत्मा एक ऊर्जा है, लेकिन ये ऊर्जा जितने हमारे संकल्प कम पॉजिटिव उतना उस ऊर्जा का हम अनुभव कर पाते हैं। लेकिन माया विभिन्न रूप से आकर के संकल्प के ऊपर अटैक करते हैं, संकल्प निगेटिव चलाने के निमित्त बनाते हैं। और जब हमारे संकल्प निगेटिव चलते हैं, फास्ट चलते हैं, तब उस निराकारी स्थिति का हम अनुभव नहीं कर पाते। और जब उसी संकल्प के बहाव में चले जाते हैं तो हमारा समय भी चला जाता है, और जिसके कारण हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं रहती। इसीलिए हमें संकल्प के खजाने की तरफ ध्यान देना है। तो ये खजाना व्यर्थ जाने का कारण क्या है? वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहला कारण है जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या, और जब हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आते हैं तब हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हैं। इसलिए अगर संकल्प के खजानों को बचाना है तो हमें समस्याओं का समाधान करने की कला सीखनी है। इसलिए बाबा ने 2-3 सालों से खास बाबा इसके पर जोर दे रहे कि समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, नो प्रॉब्लम स्थिति को बनाओ। तो जिन्होंने इस कला को सीखा है वही अपने संकल्प की बचत कर सकता है, और जिन्होंने संकल्प का खजाना जमा किया है वो आगे चल करके मनसा सेवा, वाइब्रेशन की सेवा, सकास की सेवा कर सकता है। क्योंकि जिसके पास ये संकल्प का खजाना जमा होगा उसके संकल्प में सिद्धियां प्राप्त होगी, जो सोचेगा वो सिद्ध होगा, उसके संकल्पों में बल होगा। इसलिए हमें इस शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए हमें कला सीखने, जीवन में जो विभिन्न समस्याएं आती हैं इस समस्याओं का हमें क्या करना है, समाधान। अगर हमारे मन में संकल्प का तूफान है तो हम योग का अनुभव भी नहीं कर पाते। जिस तरह से पानी के अंदर पत्थर डालेंगे और आकाश के चंद्रमा को पानी में देखने की कोशिश करेंगे, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर मन में संकल्प का तूफान है और उसी मन में हम बाबा को देखना चाहते हैं या स्वयं के आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिस्थिति विपरीत हो, समस्या विपरीत हो, तो भी हमारे संकल्प के अंदर तूफान ना हो। तो ये कला हमें क्या करना ही सीख ली, और इसीलिए खास बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाते, ये ज्ञान बाबा ने क्यों दिए हैं, क्योंकि इस ज्ञान के आधार से जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। और जिसके मन में संकल्पों का तूफान चलता है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर पाएगा, वो प्रभु का गुणगान गा नहीं पाएगा। इसलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है जिसे हम अपने संकल्प की शक्ति को बचा पाएंगे। और जब हमारे संकल्प फास्ट चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, जिसे आज दुनिया में जिसको तनाव या टेंशन कहते हैं, तनाव या टेंशन क्या चीज है? तनाव अर्थात जीवन में जो समस्या आई, जो प्रॉब्लम्स आए, उसके संकल्प के ऊपर कंट्रोल नहीं चला और जिसके कारण तनाव निर्माण हुआ। और हम ज्ञान में चलने के बावजूद भी अगर हम संकल्प के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब भी हमें तनाव निर्माण होगा, और जिसको तनाव निर्माण होता है, संकल्प की स्पीड बढ़ जाते हैं, उसका दिमाग कैसा रहेगा, गर्म, और उसके कारण विभिन्न प्रकार के केमिकल्स शरीर में उतरते हैं और उसी केमिकल से कई प्रकार की बीमारियां भी होने की संभावना है। आज किसी को ईर्ष्या होते है, ईर्ष्या करने से पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? ईर्ष्या वाले संकल्प चलाने वालों को पेट की बीमारी होती। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को जितना याद करते हैं, किसको देखते ही सामने याद आता है, इन्होंने मेरे को ऐसा कहा था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, वो बार बार संकल्प चलाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज किसी को शुगर होते है, क्यों? दूसरे को अपने अंडर में रखने की कोशिश करेंगे, कहेंगे इनको मैंने संभाला, इसको पाला, पढ़ाया लिखाया, अब मेरा कहना नहीं मान रहे। और ये संकल्प चलने से ऐसा ही केमिकल उतरते और शुगर बन जाते। इसी तरह शरीर की विभिन्न जो बीमारियां हैं उसका कारण है संकल्प में निगेटिव। इसलिए कोई भी विपरीत परिस्थितियों में भी क्या करना, में अपने संकल्प की बचत करनी है, संकल्प के खजानों को बचाना है। तो जैसे बता रहे थे कि संकल्प हमारे बचे, इसके लिए कला पहली है जीवन की समस्याओं का क्या करें, समाधान और कारणों का निवारण। पिछले साल के सीजन की लास्ट की मुरली बाबा की थी, सबको पता होगा बाबा ने खास एक शब्द के ऊपर जोर दिया था। बाबा ने कहा कि बच्चों का एक शब्द बाप को अच्छा नहीं लगता, और वो कौन सा शब्द, कारण। और बाबा ने कहा कि कारण का क्या करो, निवारण करो, क्योंकि जिसके जीवन में कोई कारण है वो संकल्प व्यर्थ गवाएगा, इसके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण मेरा ऐसा हो रहा है, और जिसके कारण संकल्प चलेंगे। वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ क्या है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प को बचाना, अपने समय को बचाना। बाबा ने पिछले 2 साल से खास जो नए नए बच्चे आते हैं, बाबा उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा युक्ति बता रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ की बाबा परिभाषा क्या कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। तो अगर हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, हम अपने संकल्प को क्या करना है, बचाना है। और ये संकल्प चलने का आजकल जो कारण है वो है समस्याएं। अलग अलग प्रकार की जीवन में समस्या आते हैं, और हर एक के जीवन में अलग अलग समस्या है। समझो आज सवेरे हम सोचते हैं कि भाई आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, आज मौन में रहेंगे, संकल्प नहीं चलाएंगे, किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं सोचेंगे, प्लान तो बनाया, लेकिन कर्म क्षेत्र पर जाने के बाद अगर समस्या आई, किसी ने कुछ कहा, तो जब मन में संकल्प चलेंगे, सोचेंगे इन्होंने मेरे को ऐसा क्यों कहा, फिर ऐसा उसने क्यों बोला, फिर वही उन्हीं बातों को औरों को सुनाएंगे, दूसरे का भी टाइम वेस्ट, खुद का भी टाइम वेस्ट, और जो सवेरे प्लान बनाया था वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ऐसे समय पर हमें, जैसे अभी गीत सुन रहे थे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये कर्म सिद्धांत है, ये सृष्टि का नियम है। आज हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है विभिन्न प्रकार की, चलो 2 मिनट बाबा की, तो बात चल रही थी कि किस तरह से ये हमारे संकल्प जब व्यर्थ चलते हैं तो हमारा समय, भले हम कर्म कर रहे हैं लेकिन संकल्प अगर हमारे चल रहे अंदर से तो उस कर्म का भी फल जो योग्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये समझो हम योग में बैठे, योग में, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो ये भी हमारा समय क्या हो गया, व्यर्थ गया। तो इस तरह से हमारा संकल्प व्यर्थ जाने से सारा समय व्यर्थ जाता है। अगर संकल्प व्यर्थ गए तो हमारा बोल भी व्यर्थ निकलते हैं। इसलिए हमें संकल्प के खजानों को बचाने के लिए जीवन में आने वाली जो भी समस्या है उस समस्याओं का क्या करना है, समाधान। तो जैसे बता रहे थे समस्या, आजकल छोटी छोटी समस्या हर एक के जीवन में, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। कोई किसी को पति बन करके तंग करता है, किसी को पड़ोसी बन करके तंग करता है, और इस समस्या के कारण हमारे खुद के भी संकल्प चलते हैं और साथ में औरों को भी हम सुनाते हैं, जिसको आजकल हम कहते हैं प्रॉब्लम्स। तो ये जो छोटी छोटी समस्या कहां से आते हैं, समस्या वास्तव में हमारे ही कोई ना कोई जन्मों के केवे कर्मों का फल होते हैं, लेकिन ये नॉलेज न होने के कारण हम कहते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, वंडरफुल क्वेश्चंस निकालते हैं या अंदर से संकल्प चलाते। तो ऐसे समय पे भी हमारा मन, परिस्थितियों में भी मन कैसा रहे, शांत रहे। कल मैंने कई बात पढ़ रहे थे, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, समस्या या परिस्थिति आती है लेकिन हमें अनुभूति वाला, अनुभव वाला माखन खिला करके जाती है। वास्तव में हमारे जीवन में जो समस्या आती है वो हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है, इसलिए समस्या से घबराना नहीं है। समस्या का स्वयं ही क्या करना है, समाधान करना है। आज तक हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आई उन्हीं समस्या ने हमारा भला किया या बुरा किया है, अनुभव क्या कहता है, अनुभव तो यही कहता है कि आज तक जो भी समस्या आई उन्हीं समस्या से हमारा कल्याण ही हुआ है। तो अभी भी जो समस्या आएंगी उसे भी हमारा क्या होने वाला है, कल्याण ही होने वाला है। इसीलिए संकल्प विकल्प चला करके समय व्यर्थ गवाने के बजाय हमें क्या करना है, अपने मन को शांति में रखना है और तब आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, तब जाकर के हम सोमानों का अभ्यास कर सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, समस्या का समाधान, और उसके लिए कर्मों की घुई गति को समझना ये वर्तमान समय की बहुत आवश्यकता है। अगर संकल्प को बचाना है तो कर्मों के घुई गति का ज्ञाता बनना जरूरी है। जो भी संसार में जो भी बातें चलते हैं या समस्या आते हैं ये हर एक के कहीं ना कहीं किए हुए कर्मों के आधार से चलती है, और जो सारा दिन कर्मों के हिसाब किताब को बुद्धि में रखता है उतना ही वो अपने संकल्प को ब्रेक लगा सकता है। तो किस तरह से हमारे जो जीवन में समस्या आती है वो समस्या कैसी आती है, कई बार हम एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताते रहते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल आए। अगर जिन्होंने इस कर्मों की घुई गति को समझा है वो कभी भी अपने संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाएगा। ये एग्जाम्पल कोई कहानी नहीं लेकिन एक घटी हुई घटना है। कहते एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, तो जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान बंद थे कुछ कारण से। तो उस व्यापारी को लगता मैं बैठे बैठे क्या करूं, मैंने आगरा कभी गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया, और उसने अपने साथ में काफी सारे पैसे लाए थे, कुछ खरीदारी भी करना था, कुछ पुराना हिसाब भी देना था। तो जब वो व्यापारी आगरा में गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात में उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भी हमारे होटल बुक है। उसको लगता है मैं रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो मेरी बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो मैं उनके पास जाता हूं। तो व्यापारी क्या करता है, रिक्शा करके उनके पास गया, खाना वगैरह खाया उस गरीब पति पत्नी के पास, लेकिन सोने से पहले उसको अपने कपड़े बदलने थे, इसलिए उसने बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, उसने देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल हैं, काफी सारा पैसा बैग में था। और वो देख करके उस गरीब की पत्नी को लगता है कि इतने इसके पास इतना सारा पैसा है और हम कितना गरीब हैं, अगर इसमें से थोड़ा भी पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उस गरीब की पत्नी को वो पैसे दिखाई पड़ते। तो 12-1 बजे वो बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लाया और ला करके उस सोए मेहमान के क्या करते, जोर से सिर में डाल देते। उसका तो मर्डर हो गया, फटाफट बैग पकड़ करके पति को दिखाते। पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, अब इसको हम यमुना नदी में डालते हैं। तो दोनों ने उठा करके उस मुर्दे को क्या क्या पीछे यमुना नदी में डाल दिया अंधेरे में। वापिस आकर के घर की लिपाई पुताई की, इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। आखिर उन्होंने क्या क्या, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, बिल्डिंग बना दी, साथ में उन्होंने गहने बनाए, अच्छा ड्रेस सिलाई किया, साथ में उन्होंने एक गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चा नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ समय के बाद दोनों का एक बच्चा हो गया, तो एक ही था इसलिए उसको खिलाया पिलाया, उस बच्चे को बड़ा किया। बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, लेकिन कुछ कारण से वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने के कारण उनको लगता है कुछ न हो जाए इसको, इसलिए बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े। सोचा बाद में खरीद कर लेंगे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, दूसरे हॉस्पिटल में उस बच्चे को दिखाया और उसके पीछे उनको गाड़ी बेचनी पड़ी, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने दुकान बंद किया, सब पैसा बीमारी में लगाया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो भी बनाई थी बिल्डिंग वो भी बेची, बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। बच्चा चला गया। बच्चा कौन था, वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। अगर वो व्यक्ति कहे भगवान मेरे जीवन में कितनी समस्या आई, मेरा बेटा बीमार हुआ, ऐसा हुआ, खूब संकल्प चले या सोचे, तो समस्या भगवान ने दी, उसने कर्मों से बनाई। तो इसी तरह ये क्यों घटना सुनाई, आज हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घटनाएं आ रहे हैं, ऐसी समस्या आते हैं, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी को पति बन करके तंग करता है, कोई किसी को सास बन करके तंग करता है, और जिसके कारण आज हमारे संकल्प क्या हो रहे हैं, व्यर्थ चल रहे। हम कहते हैं मैं तो इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, तो भी ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसे समय पर क्या चाहिए। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जिसके बुद्धि में कर्मों का ज्ञान होगा वो अपने संकल्पों को क्या करेगा, संकल्प के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो संकल्प के ऊपर कंट्रोल न होने से फिर उसी का चिंतन, जिसको कहते पर चिंतन, उसी के साथ नफरत, घृणा भाव, वैर भाव, साथ में दूसरों को भी फिर जाकर के सुनाएंगे और इसी में हमारा समय भी क्या हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए कर्मों के घुई गति को बुद्धि में रखना वर्तमान समय बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने संकल्प के खजाने को बचा पाएंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपना मन को एकाग्र रख सकेंगे। इसलिए अगर संकल्प के खजानों को बचाना है तो कर्मों के घुई गति को हमें क्या करना है, बुद्धि में रखना है। यह है पहली बात। दूसरी बात है, जो विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो। गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा। अगर हमें संकल्प को खजानों को बचाना है तो सारा दिन हमें क्या करना है, इस बात को बुद्धि में रखना है। हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति आते हैं, विघ्न आता है जिसके कारण हमारे संकल्प का खजाना व्यर्थ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कल्याण है। जैसे बताया कि आज तक जो समस्या आई उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हमारा कल्याण किया, और अभी भी जो समस्या आएंगी उसे भी हमारा क्या होगा, कल्याण ही होगा। जैसे वो रामायण की घटना सुनाते ना, राम राजा बनने वाला था लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई, कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के मंत्रा ने क्या किया, राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष में वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, और तीनों घर से गए। इसी वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। उनको खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी, सब गाली देंगे, कहेंगे कितना गलत काम किया, लेकिन मंत्रा ने जो किया अच्छा किया। अगर मंत्रा ऐसा काम ना करती तो राम क्या बनने वाला था, राजा। अगर वो राजा बनता तो जंगल में जाता, अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कौन गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है, मंत्रा के कारण। तो इसी तरह वैसे तो ड्रामानुसार हर व्यक्ति के पास भी एक दो मंत्रा रखी है, लेकिन आज जो हमारे संकल्प व्यर्थ जाते हैं किसके कारण, ऐसी आत्मा को देखने से, ऐसी आत्मा का व्यवहार के कारण। लेकिन हमें क्या करना है, उसके प्रति भी पॉजिटिव भाव, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। तब ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए भी क्या होगा, आप अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे। यही व्यक्ति मुझे महिमा योग्य बनाने वाला है, इसी व्यक्ति के साथ मेरा कल्याण होने वाला है। इसीलिए हमारा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण हो, तब हम संकल्प को बचा पाएंगे। नहीं तो चाहते नहीं है तो भी क्या करते हैं, किसी का परचिंतन करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। आज क्रोध क्या चीज है, क्रोध अर्थात जिसका संकल्प के ऊपर कंट्रोल नहीं है वही क्रोध है। जैसे वो कुकर होता है ना, कुकर क्या होता है, गैस के ऊपर रखने से गर्म होते होते सीटी मार देता है। इसी तरह जिसके संकल्प बार बार निगेटिव चले हैं, निगेटिव चलते 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 वो एक साल के बाद सीटी भी मार देता है, कहता है तुम्हारा एक साल से देखा, अब मेरे से नहीं होगा, मना सीटी क्या की, मार दी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना जरूरी है, और तब जाकर के हम संकल्प की शक्ति को बचा सकेंगे। क्योंकि अब समय इन छोटी छोटी बातों का चिंतन करके समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है, नहीं तो हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बाबा कहते ना अब चलने का भी समय नहीं है, अब उड़ने का समय है। लेकिन कौन उड़ सकता है? जो सारा दिन अपने संकल्प को क्या करता है, बचाता है। सवेरे से लेकर के हम जब भी फील्ड में कर्म क्षेत्र में निकलते हैं, उसी समय सोच के निकले कि आज न जाने जिसके जिसके हिसाब किताब होंगे वो आएंगे, मुझे उसको क्या करना है, सुख तो करना है। अब चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज सुख तो हो गया, धन्यवाद। ऐसे नहीं कि गाली क्यों दी, उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमें यहां सुख तो करना है। तो सारा दिन हमें क्या करना, अपने संकल्प की तरफ ध्यान देना है। और किसी ने कुछ कहा भी तो कहा किसको, कहा आत्मा को कहा या मन को कहा? आत्मा को कहा, लेकिन मन क्या करता है, सोचता है। इसीलिए बाबा ने पिछली बार भी कहा ना, स्वराज्य अधिकारी बनो, हर कर्मेंद्रिय का राजा, मन का भी राजा। जो मन का राज्य है, बुद्धि का राज्य है, सभी कर्मेंद्रियों का राज्य है, वही क्या बनेगा भविष्य में, विश्व का राजा बन सकता है। जिन्होंने अपने मन को ही कंट्रोल नहीं किया, बुद्धि को ही कंट्रोल नहीं किया, इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं किया, वो राजा कैसे बनेगा? इसीलिए हमें संकल्प के खजानों को क्या करना है, बचाना है। संकल्प से बोल चलते हैं, संकल्प से हम वाइब्रेशंस भी बना सकते हैं। इसीलिए जितने हमारे संकल्प कम होंगे, उतनी हम अपनी आत्मा की चमक को बढ़ा सकते हैं, आत्माभिमानी स्थिति को नेचुरल बना सकते हैं। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, संकल्प के खजानों को बचाता है, वो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करेगा, बिंदु स्वरूप स्थिति का अनुभव करेगा, और वही वाइब्रेशन को, वायुमंडल को अच्छा शुद्ध फैला सकेगा। इसलिए ऐसी सेवा करने के लिए जो ये छोटी छोटी बातें आती हैं, उन बातों के ऊपर क्या करना, हमें ध्यान देना है और उन बातों को सकारात्मक रूप में लेना है। और समस्या अंत तक आएगी, कभी माया के तरफ से भी आएंगी, जिसको बाबा कहते हैं पुराने संस्कार। और जिसको पुराने संस्कार के तरफ भी समस्या आती है, तब भी संकल्प क्या होते हैं, विरत जाते हैं। संबंधों के तरफ से आएंगी, प्रकृति के तरफ से आएंगी, लेकिन हमें अपने संकल्प को क्या करना है, बचाना है। कई सोचते क्या है, परिस्थिति अनुकूल होगी तब हम क्या करेंगे, समस्या खत्म होगी तब हम ज्ञान योग करेंगे, समस्या अंत तक आएगी। कहते एक व्यक्ति सागर के पास गया नहाने के लिए, लेकिन लहरें देखकर के वो नहा ही नहीं रहा था। तो किसी ने कहा कि आप क्यों स्नान नहीं कर रहे, कहा कि लहरें थमेगी तब नहाऊंगा। उसने कहा तो सागर में तो लहरें आएगी। इसी तरह जीवन में समस्या तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना है, जीवन में समस्या होते हुए भी हमें क्या करना है, उसका समाधान करना है। क्योंकि समस्या के चिंतन में हमारा समय बहुत व्यर्थ जाता है। लास्ट और एक कहानी सुना करके पूरा करेंगे। क्यों बाबा ये कहते कि बच्चे समय व्यर्थ नहीं गवाऊं, संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाऊं? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, और ये समय को सफल करने का साधन है सकारात्मक चिंतन, सोमानों का चिंतन, ज्ञान का चिंतन। अगर संकल्प यही हमारे अगर व्यर्थ होंगे तो ना हम ज्ञान का चिंतन, ना आत्मचिंतन, ना परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। इसलिए अब समय हमारे पास बहुत कम है। आज दुनिया में भी देखो विनाश के बारे में कितनी सारी चर्चा करते हैं। अब 2012 होगा या कब होगा, इसके लिए तो जरूर नहीं कि उसी डेट में होगा। तो बाबा ने तो कहा कि अचानक होगा और किसी समय भी होगा। इसीलिए हमें एवरेडी बनना है, और एवरेडी बनने के लिए संकल्प को हमें क्या करना है, बचाना है। जितना हम संकल्प को बचाएंगे उतना एवरेडी बनते रहेंगे। एवरेडी किसको कहते हैं? एवरेडी अर्थात जो सदा निराकारी अवस्था में रहता है, और जो निराकारी अवस्था में रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में उपरांतता की अवस्था आएगी, उसके जीवन में दैवी गुण आएंगे, उसकी चाल चलन सत्युग के लायक बन जाएंगे। और ऐसी अवस्था बनाने के लिए हमें संकल्प को बचाने की आवश्यकता है, और इसके लिए समय का महत्व, वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। तो ये छोटी छोटी समस्या का चिंतन, दूसरे का चिंतन, पर चिंतन, ये करके हम अपने संकल्प के खजानों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। वो कहानी सुनाने जा रहा था आपको, कहते एक यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, तो यात्रा करते करते उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो जाते हैं। जब जंगल से शुरू हो जाते हैं तो उस यात्री को लगता है कहीं शेर चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके वो जाता है। तो चलते चलते अचानक उसने पीछे मुड़ करके देखा, उसके पीछे एक शेर लगा था, और उस शेर से बचने के लिए वो यात्री क्या करता है, दौड़ता है। तो दौड़ते दौड़ते वो पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है, अचानक जंगल में कुछ कुएं थे, पुराना कुआ था, तो यात्री क्या करता है, वो कुएं के अंदर गिर जाता है। उसको दिखाई नहीं पड़ा, बेल पत्ती झाड़ियां बड़ी थी। जब वो गिर गया तो नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियां थी, उसको उसके ऊपर लटक गया। तो उसको जान में जान आई, होश आया, तो उसको लगा कि अच्छा हुआ मैं गिर गया, नहीं तो शेर मुझे खा लेता। उसको लगा कि शेर से मैं बच गया, लेकिन उसने ऊपर देखा तो शेर आकर के ऊपर बैठा था। उसको लगा कि मेरी शिकार अब नीचे गई है। उसको लगा कि मैं ऊपर जाऊंगा नहीं तो शेर क्या खाएगा। लेकिन इतने में उसकी नजर नीचे गई, उसने देखा कि पानी कितना कुएं में है, कितना गहरा है, देखता हूं। जब देखा उसके पांव के थोड़ा सा नीचे एक बहुत बड़ा अजगर बैठा था मुंह फैला करके। अगर उसको लगता है ऊपर जाओ तो शेर खा लेगा, अगर यहीं बैठे रहो तो क्या हो जाएगा, अजगर खा लेगा। इतने में उसकी नजर गई जिस डाली पर वो लटका था, उसको दो चूहे काट रहे थे, एक सफेद चूहा और दूसरा काला चूहा। मना उस डाली पर भी ज्यादा समय टिक नहीं सकता था, मना उस यात्री के चारों तरफ से मौत था। इतने में उसकी नजर गई जिस डाली से वो लटका था, ऊपर से गिरा था कुएं में, उसको मधुमक्खिया बैठी थी, वो उड़ के गई थी, और उसका शहद नीचे टपक रहा था। तो यात्री क्या करता है, वो शहद लेकर के चाटने में लग जाता है। वास्तव में उसका फर्ज क्या था, अब उसका अंतिम श्वास चल रहा है, मरने वाला है, तो कम से कम वो थोड़े से जितने श्वास रहे उसको भगवान को याद करके वो सफल कर सकता था। लेकिन वो करने के बजाय वो क्या करता है, वो शेर चाटने में लग जाता है। तो ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए आए हैं ऊपर से, लेकिन अब हमारी यात्रा जंगल से शुरू हो गई, और इसी जंगल में हम सबके पीछे अब विनाश रूपी शेर लगा हुआ है। और इस सृष्टि में कुछ ऐसा भौगोलिक परिवर्तन होने वाला है जिसके कारण आप सभी जानते हैं, सृष्टि में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बर्फ है, लेकिन सूरज की किरणों के कारण, ओजोन लेयर टूटने के कारण वो बर्फ पिघल रहा है, जिसके कारण वो सृष्टि समतोल बिगड़ेगा, जिसके कारण अनेक ज्वालामुखी फटेगी और उसी ज्वालामुखी के मुंह के अंदर अनेक शहर के शहर गांव के गांव जाएंगे। मना अजगर मुंह फैला करके बैठा है और ऊपर से बॉम्ब्स अनबॉम्ब्स, मना शेर भी है और अजगर भी है। और जिस डाली पर हम लटके हैं उसको दो चूहे काट रहे हैं, कौन से? एक काला चूहा अर्थात रात, और दिन है सफेद चूहा। ये जल्दी जल्दी पूरा करने का काम हो रहा है। और ऐसे समय पर अगर हम अपने संकल्प रूपी खजानों को व्यर्थ गवाएंगे ना, उसका चिंतन, धन इकट्ठा करने में और बातों में समस्या का चिंतन करने में अगर हम समय रूपी खजाना को व्यर्थ गवाएंगे तो प्राप्ति कर पाएंगे? इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अभी आपके पास समय बहुत कम है और इस समय रूपी खजानों को सफल करने का साधन है अपने एक एक संकल्प को क्या करो, प्रभु चिंतन करने में, आत्म चिंतन करने में, सोमानों का चिंतन करने में, सो उन्नति करने में लगा दो, क्योंकि इससे ही आपका जमा होगा और जन्म जन्मांतर का जो विकर्म है वो विकर्म भी क्या होगा, विनाश होगा। इसीलिए अब हमें छोटी छोटी बातों को सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट केयर करो, उसको सोचना नहीं, सोचने से समय चला जाएगा। इसीलिए अब हमारे गिनती के श्वास है, जैसा उस व्यक्ति के गिनती के श्वास थे तो इसी तरह अब हमारे गिनती के श्वास है। न जाने कब क्या हो सकता है, दुनिया की स्थिति तो सब देख रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे एक एक संकल्प को क्या करो, महत्व दो, एक एक संकल्प को बचाओ, सारा दिन मन का मौन रखो, मन को कोई ना कोई सोमान दो। मन को सोमान देने से मन व्यर्थ से मुक्त होगा और तब जाकर के हम अशरीरी स्थिति का, आत्माभिमानी स्थिति का, योग के अनुभूति का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए संकल्प ये बहुत बड़ा खजाना है, इसीलिए परिस्थितियों का हमें चिंतन नहीं करना है। तो इसीलिए एक तो समस्याओं का समाधान करना है, समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना है और संकल्प रूपी खजाना क्या करना है, बचाना है। बाकी तो समय हुआ, लेकिन बहन जी ने खास कहा था, दो मिनट अपना परिचय भी दे देना, शॉर्ट में जाते जाते परिचय दे देता हूं। वैसे शरीर का नाम है भगवान भाई, लौकिक में वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी कुछ नए नए के लिए बोला था। लौकिक में महाराष्ट्र से निकले थे, तो वैसे लौकिक परिवार बहुत एक साधारण परिवार में लौकिक में जन्म हुआ था, जिस परिवार में पढ़े लिखे कोई थे नहीं। तो मैं भी 11 साल तक स्कूल में नहीं गया था, लेकिन मैं बचपन में सोचता था कि भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाना है। लेकिन मैं सोचता था मैं पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं, अच्छे कर्म कैसे कर सकता हूँ। तो मैं 11 साल के बाद ऐसे अपने गाँव में गया, तो गाँव में एक ही टीचर था और 7वीं तक कक्षा थी, स्कूल थी। तो टीचर ने मुझे बुलाया, कहा कि आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? हमने कहा मुझे पता नहीं। बोला कोई बात नहीं, कल से आना। तो मैंने जाना शुरू किया, तो जाते ही मुझे क्या किया, पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 11 साल उम्र हुई थी और 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे, इसी के कारण डायरेक्ट 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा कि रोज आप कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल में क्या होता है, अपने पास पैसा वगैरह नहीं है, नहीं जाना। हमने कहा पैसे वगैरह नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो कहा कि बिना पैसे के पढ़ना है तो भले जाओ। रोज जब जाना शुरू किया तो एक साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, और मैं भी सोचता था मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मुझे किसी साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ध्यान से पढ़ना है। तो उसके कारण फिर 11 साल के बाद जब 7वीं कक्षा में गए, तो एक दिन टीचर ने कहा कि तुम डायरी भी नहीं लाते, पेन कल से स्कूल में नहीं आना। तो हमने सोचा अभी क्या करेंगे, घर में तो मना किया पैसे के लिए, और स्कूल भी नहीं छोड़ना है, किसी की डायरी को चोरी भी नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, गांव में एक दुकान वाला था, किरान माल का दुकान वाला, उसके पास गया और उसके पास जो पुरानी रद्दी की डायरी है, जो लिखी हुई रद्दी में डालते हैं, उसको पुरानी डायरी को लाई। मैंने सोचा उसमें 2-3 पन्ने होंगे जो बिना लिखे हुए, उसको ला करके हम क्या करेंगे, डायरी बना देंगे। लेकिन पूरी डायरी लिखी थी, कोई कोई पन्ने पर 2 लाइन लिखी, बाकी पना खाली है। तो हमने सोचा दो तीन लाइन कैसे निकालेंगे इसको। पहले जमाने में कलम से स्याही से लिखते थे। मैंने क्या किया, उसको पानी से धुलाई किया, धुलाई करने से स्याही निकल गई, फिर उसको धूप में सुखाया और इस तरह से उसको फिर सिलाई करके डायरी बनाई, ऐसे करके पढ़ाई किया सातवीं आठवीं नवीं। जब नवीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी की किताब के कुछ पन्ने मिले और उसमें खास तीन लोग का चित्र था, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो मैंने उसको क्या किया, टीचर को दिखाया, क्योंकि उसी आठ दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया, चांद से पार कोई गया ही नहीं है क्योंकि वहां कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन जब तीन लोग का चित्र देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सर को दिखाया, सर आपने तो कहा कि मनुष्य चांद तक गया है, आर्मस्ट्रांग नील आर्मस्ट्रांग ऐसे कुछ दो नाम थे, लेकिन कहा कि ये इससे भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, वहां कौन गया था। तो टीचर ने जब देखा कहा कि मुझे कुछ समझा नहीं, छोड़ो बोला। तो उसके ऊपर नागपुर का ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, मतलब स्टैंप लगाया था। तो मैंने क्या किया, वहां एक 15 पैसे का लेटर लिखा, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए हैं, लेकिन कौन कौन गया था, आप लोगों ने अपना साइंस में नाम क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिखा। तो वहां से एक मुझे पत्र आया, आप 10 रूपये भेजो, हम आपको और किताब भेजेंगे। मेरे पास 10 रूपये तो था ही नहीं, तो मैं कुएं से ला करके पानी बेचता था, 2 पैसा 3 पैसा ऐसे करके। तो वे 1977 की बात होंगी। फिर 10 रूपये क्या क्या मैंने 6 मास तक पानी ऐसा कभी बीच में जब टाइम मिलता था स्कूल से भर करके 10 रूपये इकट्ठा किया, इसको एमओ से भेजा नागपुर में, और वहां से मुझे क्या क्या करस्पॉन्डेंट कोर्स की किताब आने लगी। जब वो किताब आती थी तो उसको पढ़ करके मैं उसके अंदर जो राजयोग का अभ्यास है, कैसे करना है, कितना बजे उठना है, वो करता रहा। तो इस तरह से ज्ञान को समझा। फिर उसके बाद 2 साल के बाद जब वहां से बड़े सिटी में गया था आईटीआई का कोर्स करने के लिए, तो वहां एक सेंटर था, वहां जाने लगा और इस तरह से पक्का बाबा का बच्चा बना। उसके बाद जब पहली बार मधुबन में आए थे, सेवा का चांस मिला। उसके बाद फिर दिल्ली में गए, दिल्ली में 9 साल सेवा किया, उसके बाद फिर मधुबन में आए, तो अभी वर्तमान समय यहां रहते हैं। तो कैसे बाबा ने देखो, रद्दी से बाबा ने अपना परिचय, लेकिन शुरू से लेकर के ज्ञान योग की तरफ बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, इसीलिए बाबा ने आज लगातार निर्विघन 26-27 सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। उसका तो बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसे साधारण परिवार से भी बाबा ने निकाल करके आज बाबा ने कहा, गीत है ना अपने एक चरणों की, चरणों में जगह मांगी थी लेकिन बाबा ने कहां से क्या बनाया। यह है बाबा की कमाल। ओम शांति।